तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله। خوابوں کی تعبیریں کے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں انشاءاللہ عزوجل। आज भी आपकी कॉल्स आपके मैसेजेस सिलसिले में शामिल करेंगे। दुरूद पाक की फजीलत तरक्की मारिफत और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महब्बत को बढ़ाने के लिए पेशे खिदमत करता हूँ। हदीस पाक का मफहूम है, इरशाद फरमाया जब तुम रसूलों पर दुरूद भेजो तो मुझ पर भी दुरूद भेजो, बेशक मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक हिकायत सुनाना चाहूँगा कि ये जो ख्वाबों की ताबीर का इल्म है और बुज़ुर्गान दीन के बारगाह में जब कोई ख्वाब बयान करता था तो उसकी ताबीर को बयान फरमाते थे तो बाज़ औक़ात बड़े हैरत अंगेज़ और गुनाहों से बचाने वाले वाक़ियात भी रूनुमा होते थे। जहाँ इसकी एक बरकत यह है कि हमें किसी आइंदा पेश आमदा मसले की तरफ तवज्जो हो जाती है, किसी आजमाइश की तरफ, दुख की तरफ, तकलीफ़ की तरफ मालूम होता है, तवज्जो जाती है। वहीं इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी किताबों में पढ़ने को मिला कि बाज़ औक़ात सामने वाला जो ख्वाब बयान करने वाला होता है वो किसी गुनाह में मुब्तला होता है और हैरत की बात यह है कि वो गुनाह भी पोशीदा होता है जिसका ख़ुद उसको भी इल्म नहीं होता, ना दानिस्ता तौर पर उसमें मुब्तला होता है, लेकिन ख्वाब के ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से ऐसा इशारा मिल जाता है जिसको ताबीर बयान करने वाला महसूस करता है कि जब बाद में उसकी तहकीक की जाती है, गौर किया जाता है तो बात वैसी ही निकलती है। एक वाक़या पढ़ने को मिला था, मैंने चाहा कि आपसे भी शेयर करता चलूं। इब्न सिरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि ख्वाबों की ताबीर के इल्म में इमाम की हैसियत रखते हैं, मुक्तदा हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, इनके बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुआ और अपना ख्वाब बयान किया कि हुजूर मैंने ये ख्वाब देखा है कि जैतून का दरख्त है और मैं उसे सैराब कर रहा हूँ, लेकिन पानी से नहीं, रोगने जैतून से ही उसे सैराब कर रहा हूँ, यानी जो ऑयल होता है जैतून का तेल होता है उसी से मैं उसे सैराब कर रहा हूँ। आप रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अक्द में यानी तुम्हारे निकाह में जो औरत है वो तुम्हारी महरम है, कोई रज़ाई रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ। बड़ी तज्जुब की बात है कि जिससे निकाह हो उससे रज़ाई रिश्ता हो, यानी महरम से निकाह हो नहीं सकता, नाजायज़ होता है, लेकिन उसके इल्म में नहीं था, तवज्जो नहीं थी। बाद में उसने तहकीक की कि ज़ाहिर बताने वाले इतने बड़े इमाम हैं और ख्वाबों की ताबीर ये एक इल्म है, ज़रूर इसके ज़िम्न में कुछ ना कुछ हुआ करता है। उसने जाके मालूमात की होंगी कि जो मेरे घर में, मेरे अक्द में, मेरे निकाह में जो औरत है उससे मेरा क्या रिश्ता था, ये कहाँ से आई, उसके बारे में मालूमात की गई, तो बाद में यही साबित हुआ कि वो दूध की रिश्ते में इसके साथ मुंसलिक थी और रज़ाई बहन होगी और रज़ाई बहन से भी निकाह नहीं हो सकता, जायज़ नहीं है, तो उसने फिर उससे अलहदगी इख्तियार की। तो ऐसा भी होता है कि ख्वाब की ताबीर के ज़रिए जो है वो किसी पोशीदा अमर, किसी पोशीदा बात के बारे में भी इल्म हुआ करता है। और इस तरह के हैरत अंगेज़ जो वाक़यात हैं इनसे किताबें भरी हुई हैं और जो बयान करने वाला अपने मर्तबे के मुताबिक जो है उसे बयान करता है, जो जितना जानता है उतना ज़्यादा उसके बारे में वो बयान करता है। तो बहरहाल ये एक हिकायत थी, मैंने चाहा कि आपसे शेयर करूं और इस तरह की हिकायत सुनकर एक रग़बत भी बढ़ती है कि हमें भी ख्वाब की ताबीर से मुतालिक मालूमात होनी चाहिए और इसी रगबत का इज़हार आप अपनी कॉल्स के ज़रिए करते हैं, मैसेजेस के ज़रिए भी करते हैं। तो अव्वलन आपकी कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, आप मुंतज़िर होंगे जिन्होंने अपनी कॉल रिकॉर्ड करवाई होगी कि कब हमारा नंबर आता है, तो आप ही की तरफ अब पेश कदमी है। सुनाइए पहले कॉलर क्या बयान करना चाहते हैं, आइए सुनते हैं।
मैं कमोबेश 12 मरतबा ये ख्वाब देख चुका हूँ। ख्वाब में वुजू करना और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। जी नेक्स्ट।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह।
मैं कराची से इकबाल बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चों के अम्मी ने एक ख्वाब देखा है कि वो चांद पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो वाज़े लिखा हुआ है और उसको देखकर उन्होंने दुआ मांगी है, तो बराए मेहरबानी इसकी ताबीर जो है वो बता दें
इंशाल्लाह। अर्ज करता हूँ। जी मजीद।
जी मोहम्मद ज़हीर बाद सतारी बात कर रहा हूँ। जी मैंने देखा है कि मैं अमरूद तोड़ रहा हूँ और उनको काट कर खा भी रहा हूँ, ख्वाब में देखा है। अब बाग में चल फिर रहा हूँ, वहाँ से मैंने अमरूद तोड़े और वहाँ से मैंने काट कर खाए भी हैं। मेहरबानी करके आप इसकी तबीर बता दें
इंशाल्लाह। अज़्ज़वजल ज़रूर अर्ज करते हैं। तो पहली जो कॉलम में मौसूल हुई और उसमें वुजू करते हुए अपने आप को देखा, नमाज पढ़ते हुए देखा, तो लगता है कि ये इबादत की तरफ रागिब मालूम होते हैं। वुजू करना, नमाज में अपने आप को देखना, ये इबादत में पुख्तगी की अलामत होती है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत अता फ़रमाए और मज़ीद आप इबादत की तरफ, नेकियों की तरफ कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपको और ज़्यादा नेकी करने की तौफीक नसीब होगी। और 12 मरतबा इन्होंने देखा है। ऐसे भी लोग हैं ज़माने में कि ख्वाब भी देखते हैं तो नस्बत के मुताबिक देखते हैं। बहरहाल जो जैसे माहौल से वाबस्ता होता है उसी तरफ जो उसकी तवज्जो होती है, तो अदद हुआ करते हैं। कोई अदद किसी चीज़ को मेंशन करता है, 12 का अदद जब भी तस्करा होता है तो तवज्जो जाती है 12वीं शरीफ की तरफ। और ख्वाब तो ख्वाब है, ज़ाहिर उस पर बंदे का इख्तियार नहीं होता, लेकिन जागते हुए अगर कोई कहे कि मैंने 12 मरतबा ये काम किया तो फ़ौरन तवज्जो जाती है कि ज़रूर आशिक़ रसूल होगा। 313 का अदद, इसी तरह और आदात का भी बहरहाल इंडिकेशन हुआ करती है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस्तेक़ामत अता फ़रमाए। दूसरी जो कॉल की हमारे इस्लाम भाई ने, और चाँद पर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनके बच्चों की अम्मी ने देखा, तो इसमें मुबारक की ज्यारत करना, अल्लाह तबारक व ताला के नामे नामी इसमें ग्रामी की भी ज्यारत करते हैं, तो ये मुबारक हुआ करता है, ताबीर के हवाले से बेहतर होता है, अच्छा होता है। और जो तीसरी हमें कॉल की इस्लाम भाई ने, अमरूद को इन्होंने देखा कि दरख्त से इन्होंने अमरूद को तोड़ा है और उसको फिर खाया भी है। अगर वजाहत कर देते तो ज़्यादा करीब होता, लेकिन मैं दोनों कंडीशन बयान कर देता हूँ कि अमरूद एक फल है, वो जिसने खाया वो अगर खुश जायका है, अच्छा जायका है, शीरी है, मीठा अमरूद है, वो अगर खाया तो उसे हलाल माल मिलेगा, नेमत मिलेगी, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इसे दुनियावी तौर पर आसाइश मयसर होगी। और अगर अमरूद जिसने खाया वो तुर्श जायके का है, कच्चा जायका होता है और कसीला सा भी अमरूद होता है, कच्चा जब होता है तो ज़ुबान पर उसका एक अजीब सा असर होता है और वो मीठा नहीं होता, तो अगर बेजायका, बद जायका, तुर्श जायके वाला अमरूद अगर किसी ने खाया तो वो गम की अलामत होता है। तो आप गौर कर लीजिएगा कि आपने अमरूद खाया था तो जब जागे थे तो मुंह का जायका कैसा था, तो अगर अच्छा जायका था तो अच्छा है, अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से नेमत मिलने की जो है वो अलामत है। नियत भी कर लीजिए कि मुझे अगर माल मिला, दौलत मिली, कोई भी दुनियावी नेमत मिली तो मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसे शरीयत के मुताबिक खर्च करूँगा, इस्तेमाल करूँगा, रब अज़्ज़ वजल की बारगाह में उसे पेश करूँगा। अच्छी अच्छी नियतें भी करेंगे और वाकई नियत दिल में हाजिर होगी तो सवाब मिलेगा, क्योंकि नियत का सवाब बहुत ज़्यादा हुआ करता है और मदनी माहौल के अंदर नियतों की तरगीब भी बकसरत होती है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अच्छी अच्छी नियतें करेंगे तो सवाब का मीटर जो है वो जल्द जारी हो जाएगा। बढ़ते हैं मजीद कॉल्स की तरफ, सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जी मैं ख्वाब में अक्सर देखता हूँ कि मैं सफर कर रहा हूँ और जिस गाड़ी में सफर कर रहा हूँ वो गाड़ी बहुत तेज चलती है, और मैं कभी ख्वाब में ये भी देखता हूँ कि मैं दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ। जी ताबीर बता दें। जी
माशाल्लाह, दुरूद व दुआ इबादत में से है। नेक ख्वाब होते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हुए अपने आप को देखना, या कोई भी इबादत करते हुए देखना, दुआ भी इबादत बल्कि अफजल तरीन इबादत में से एक है। और सफ़र करना ये अच्छा होता है, हालात की तब्दीली से इसकी ताबीर की जाती है कि अगर बुरे हालात हैं, मकरूज़ है, बीमार है देखने वाला, किसी आजमाइश में, किसी खौफ में मुबतला है, अल्लाह तबारक व ताला अमन अता फ़रमाएगा, शिफा अता फ़रमाएगा, मकरूज़ है तो उसको बारे कर से निजात अता फ़रमाएगा। और वैसे भी जब इसको बयान किया है तो उन रिवायात से उलमाए किराम ने रेफरेंस लिया है कि जिसमें सफ़र के फ़ज़ाइल को बयान किया गया है, सफ़र करने की बरकतों को बयान किया गया। और वैसे भी मशहूर मकूला है, सफ़र वसीला ज़फ़र होता है, तो जो बंदा सफ़र इख्तियार करता है तो उसको बेहतरी नसीब होती है। बहरहाल अब ये बंदे पर है कि वो सफ़र किस तरह का इख्तियार करता है, किस तरह के सफ़र की नियत रखता है। तो बहरहाल आपका जो ख्वाब है वो हालात की तब्दीली से इसकी ताबीर है। तो अगर आप किसी आजमाइश में होंगे, मर्ज़ में होंगे, किसी तकलीफ़ के अंदर होंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जल्द या बदेर, अभी आपने चूँकि बयान नहीं किया कि ख्वाब आपने रात में देखा, दिन में देखा और किस हिस्से में देखा, वरना ये बयान किया जाता कि जल्द या बदेर इसकी ताबीर जो है वो कब ज़ाहिर होगी। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि हालात में जो तब्दीली हो वो बेहतरी की जानिब हो, वरना हालात में तब्दीली बाज़ोकात आजमाइश वाली भी होती है, लेकिन सफ़र से जो तब्दीली होती है वो बुराई से अच्छाई की जानिब होती है, बेहतरी की जानिब होती है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ल आपको बेहतरी नसीब होगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
मेरे बच्चों की अम्मी की वालदा फोत हो गई है, अक्सर ख्वाब आते हैं, कोई फंक्शन है जिसमें जिंदा शामिल है, ख्वाब में वो होती है, वालदा होती है और बात होती है, इसकी तबीर अर्शाद फरमा दे
इंशाअल्लाह। नेक्स्ट।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
मैं अहमद अत्तारी बहावलनगर से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा मदनी चैनल के सिलसिले ख्वाबों की तबीर में ये सवाल है कि मैंने अपनी दादी जान को देखा है जो मेरे साथ आई हैं और वो बीमार हैं, हालांकि वो फौत हो चुकी हैं। तो मैं उसको हॉस्पिटल में ले जाता हूँ तो वहाँ वो है, डॉक्टर कहते हैं अब इसे जल्दी जल्दी आप टीका लगवा लें वरना ये मर जाएगी, लेकिन वो कहती है अब मैं थोड़ी देर के बाद वो कहती है कि मैं अब अल्लाह के हवाले हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पहले जो हमारे कॉलर थे, बच्चों की अम्मी की अम्मी को शायद इन्होंने देखा, बड़ी लंबी तरतीब इन्होंने बयान की है, बहरहाल अंदाज़ है इनका। तो और दूसरा जो है दादी जान को देखा इन्होंने, और दोनों को आजमाइश में देखा। दूसरे ने बयान किया कि मैंने उन्हें बीमारी के हाल में देखा, हॉस्पिटल लेकर गया, इंजेक्शन वगैरह के उन्होंने तज़किरा किया। तो फौतशुदा की ऐसी हालत अगर कोई शख्स देखे तो उसे चाहिए कि वो उस फौतशुदा को कसरत के साथ इसाले सवाब करें। और यहाँ पर ये ज़रूर तरगीब मैं आपको दूंगा कि जो भी फौतशुदा उसको इसाले सवाब भी करें और उसकी नमाज़ों का और रोज़ों का फ़िदिया ज़रूर अदा करें, क्योंकि हुकूक होते हैं, अल्लाह तबारक व ताला के हक़ हैं, इसी तरह बंदों के हुकूक हैं। तो नमाज है, रोज़ा है, इबादात में से हैं। अगर किसी की छूट गई होगी तो नमाज और रोज़े का फ़िदिया अदा करने से ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसको जो है उससे आजमाइश नहीं होगी और अल्लाह तबारक व ताला उसके मगफरत फरमाएगा। इसी तरह से हुकूकुल इबाद की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि बंदा कर्ज़ लेता है, किसी से आरियतन कोई शय लेता है वो वापस नहीं करता, बाज़ औक़ात किसी को बिला इजाज़त शरई नाराज़ किया हुआ होता है, कोई रूठा हुआ होता है। तो अगर कोई फौत हो जाए और जो उसके रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, जो भी मुतालिकीन हैं, वो उसके बारे में इल्म रखते हैं कि इसकी फ़लाँ से रंजिश थी या फ़लाँ से इसका लेन देन था, तो उसको क्लियर करवा लेना चाहिए। बहुत अच्छा हो कि अगर उसने माल नहीं छोड़ा और आपको अल्लाह तबारक व ताला ने इस्तेआत दी है तो आप अपनी तरफ से उसे अदा कर दें या उसे मुआफ़ करने की तरगीब दे दें, वो चाहे तो मुआफ़ भी कर सकता है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके फौत शुदा के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। अमूमन जो है वो जब बंदा फौत हो जाता है तो इन उमूर की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, नमाज़ जनाजा हो गया, तदफीन के मामला, ये तो सभी करते हैं, लेकिन ये फ़िदिये की अदायगी और हुकूक़ की अदायगी, वैसे जनाजे के तौर पर रस्मन ये कह तो दिया जाता है, ऐलान तो होता है, लेकिन महसूस ऐसे होता है जिस तरह के हम दीगर मामला बतौर रस्म के किया करते हैं, ये भी एक रस्मी तौर पर ऐलान बेटों में से अगर बाप का इंतकाल हुआ है या भाइयों में से कोई ऐलान कर देता है कि भाई किसी का लेन देन हो तो वो रब्ता कर ले। तो अगर वाकई दिल से किया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना यह है कि इसको वाकई एक रस्म के तौर पर नहीं हकीकत के तौर पर ऐलान कर रहे हैं आप, रब्ता करें, कोशिश करें, मालूमात करें और जितना अदा कर सकते हैं वो अदा करें। अगर कोई मुआफ़ कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, अपने मुसलमान भाई के लिए आप आसानी रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ुजल्ला आपको भी इसका ज़रूर अजर मिलेगा। अच्छा, नमाज का और रोज़े का जो फ़िदिया है वो कैसे अदा करेंगे और ये किस तरह से अदा किया जाता है? हो सकता है कि नाज़रीन में से बहुत सों के लिए ये नई बात हो और नमाज का रोज़े का फ़िदिया अदा करने का तरीका मालूम ना हो। तो मैं नमाज के अहकाम किताब जो है अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की, उसकी तरगीब आपको पेश करता हूँ, मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए। उसमें जो 12 रसाइल हैं उसमें एक पूरा रिसाला है कज़ा नमाज़ों से मुतालिक, उसके अंदर आपको नमाज़ों और रोज़ों के फ़िदिये अदा करने का तरीका लिखा हुआ मिल जाएगा कि किस तरह से हिसाब लगाना है और किस तरह से देना है। तो ये आप हासिल करें। और मदनी चैनल के वो नाज़रीन के जिनके पास मकतबतुल मदीना तक फ़िज़िकली रसाई मुमकिन नहीं, dawatislami.net जो हमारी वेबसाइट है वहाँ से भी इस किताब को हासिल कर सकते हैं। तो ये मैं तरगीब ज़रूर पेश करने की कोशिश करता हूँ। तो चूँकि कब किसका दुनिया से गुज़र हो जाए, चला जाए, हमारे इल्म में नहीं, तो ये चीज़ें हमारे जहनों के अंदर होंगी तो इंशाल्लाह हम फौजशुदा के लिए फ़ौरन ये ज़रूर कर पाएंगे। बढ़ते आगे, आपकी कॉल का सिलसिला जारी है, सुनते हैं कि मजीद आप क्या ख्वाब देख रहे हैं।
सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
मेरा नाम मोहम्मद नदीम अतारी है, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं अपनी वालदा का ख्वाब वाम बयान करना चाहता हूँ, उसकी ताबीर मालूम करना चाहता हूँ। मेरी वालदा ने ख्वाब देखा, ये ख्वाब कोई लगभग जो टाइम था वो नमाज फजर का टाइम था, अजान फजर का, सॉरी, वो उन्हें प्रॉपर याद नहीं है कि उस वक्त अजानें हो चुकी थी या अभी होने वाली थी। उन्होंने ख्वाब में देखा कि ख्वाब में उन्होंने मुझे मुर्दा हालत में देखा, यानी कि मैं चारपाई पे पड़ा हुआ हूँ। मेरे मामू आकर बताते हैं कि नदीम, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, कि नदीम फोत हो गया है। और मेरी वालदा मामू से पूछती है कि इसको क्या हुआ, ये क्यों फोत हुआ है? तो मामू कहते हैं कि पता नहीं, हमें खुद नहीं पता, बस ये पेट में इसके तकलीफ हुई थी तो इस वजह से ये फोत हो गया है। तो अम्मी वालदा मेरी जो मेरी चारपाई के पास आके बैठती हैं और जारों कतार रोना शुरू कर देती हैं। रोते रोते जब वो मेरे चेहरे की तरफ देखती हैं तो वो देखती हैं कि मैं अपनी आंखें भी झपक रहा होता हूँ और मेरे होंठ भी हिल रहे होते हैं। जी, मुझे इस ख्वाब की जो है ताबीर मालूम करनी।
एक नफसियाती बात है, ख्वाब में जब किसी के मौत का तذکرہ सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। ऐसा होता है ना नदीम भाई, आपके साथ भी हुआ होगा। और वालदा ने बेटे की मौत को ख्वाब के अंदर देखा तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा घबरा भी गई हूँ, या दीगर नाज़रीन में से किसी के साथ ऐसा मामला हुआ हो कि कोई आके हमें बयान कर दे कि यार मैंने आपको रात देखा है, आपका इंतकाल हो गया था। तो कुछ एक फीलिंग्स होती हैं, झटका लगता होगा, तो फिर हम अपने आप को जो तसल्ली देते हैं कि यार वो तो ख्वाब की बात थी, मैं तो ज़िंदा हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन मरना तो है, ये तो हकीकत है। अगरचे अब आज ये ख्वाब है, लेकिन एक दिन आपके साथ, मेरे साथ, हर एक के साथ जो भी दुनिया में इस वक्त ज़िंदा है, ये ख्वाब हकीकत की चादर ओढ़कर नमूदार होगा और ये मामला हर एक के साथ दरपेश होगा। इस तरह के ख्वाब मुसलमान के लिए एक तंबीह होते हैं, एक गोया के चोट की जा रही है, बताया जा रहा है, रिमाइंड करवाया जा रहा है कि एक दिन मरना है, आखिर मौत है। तो इसको यूँ लेना चाहिए, एक तो ये अंदाज़ा है कि अच्छा अच्छा हाँ यार ख्वाब ही तो था, तुम तो देखते रहते हो, और हो सकता है यूँ भी कह दे तो यार तू तो बस मेरे मरने के इंतज़ार में है। मजाक में नहीं, इसको यूँ लें कि ये तो ख्वाब था, अगर हकीकत में ऐसा हो जाता और गुज़श्ता रात मुझे जिसने ख्वाब में देखा कि मैं मुर्दा हुआ, हकीकत में मेरा इंतकाल हो जाता तो मेरा क्या होता? क्या मेरी मौत की तैयारी मुकम्मल है? क्या हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद और जो भी मुझ पर फ़राइज़ और वाजिबात हैं वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ? तो अगर तो वाकई आप आखिरत की तैयारी में हैं, फ़िक्र मदीना करते हैं, अच्छी सोहबत है आपकी, मदनी इनामात के आमिल हैं, इबादात की आपको तवज्जो है, फ़िक्र करते हैं, अपना मुहासबा करते हैं, तो मरहबा, और इजाफ़ा कीजिए। और अगर ऐसा मामला नहीं, गुनाहों भरी ज़िंदगी है, इल्म दीन हासिल नहीं किया, तवज्जो नहीं है, नमाज़ों की गिनती पूरी नहीं, रोज़ों की कज़ाएँ बाकी हैं, हुकूक़ किसी के अदा करने हैं और इस तरह के मामलात हैं, तो डर जाना चाहिए। और खुश नसीब कई ऐसे मिलते हैं कि जो ख्वाब में अपनी इस तरह की हालत को देखकर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाते हैं और फिर आइंदा ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे अंदाज पर गुजारा करते हैं। तो मैं आपको दावत पेश करूँगा नदीम भाई, सरदाराबाद से आपने कॉल की, अपनी वालदा का ख्वाब बयान किया, दुआ तो ज़रूर करूँगा कि अल्लाह तबारक व ताला आपको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। साथ ही फ़िदान मदीना तशरीफ़ ले जाइए, सूसा रोड मदीना टाउन में फ़िदान मदीना कायम है, वहाँ हाज़िरी दीजिए, काफ़िलों में सफ़र इख्तियार कीजिए, हर जुमरात को इज्तिमा होता है उसमें शिरकत कीजिए, अपने यहाँ होने वाले मस्जिद में दर्स में शिरकत कीजिए और अपने अंदर तब्दीली लाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल आपके लिए ख्वाब देखना आपके वालदा का बहुत मुफीद साबित होगा। अल्लाह तबारक व ताला आपको और मुझे, हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, जो इस तरह के हम ख्वाब देखा करते हैं और एक दिन हमें हकीकत का भी सामना होगा, तो अल्लाह तबारक व ताला हमें उस हकीकत के लिए अपने आप को तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। कुछ मैसेजेस को भी शामिल सिलसिला करते हैं और आपके मैसेजेस भी मौसूल हो रहे हैं जी। इस्लामी बहनों के भी मैसेजेस आते हैं, इस्लामी भाइयों के भी मैसेजेस आते हैं। एक इस्लामी बहन ने मैसेज किया है कि बहुत शौक़ से सिलसिला देखती हैं और भी मदनी चैनल के सिलसिले देखा करती हैं। यहाँ पर एक और इस्लामी भाई हैं, नासिर नाम है इनका, बकरी ख्वाब के अंदर देखिए, इसकी ताबीर बता दीजिए, इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। मुजम्मिल भाई हैं लांडी बाबुल मदीना कराची से, इन्होंने मैसेज किया है, जानवर देखते हैं बहुत ज़्यादा, कहीं बकरा मंडी के करीब तो नहीं रहते, गाय देखते हैं, बकरे देखते हैं और भी जानवरों का तज़किरा किया है, होता है ये नफसियाती तौर पर। अच्छा, यहाँ पर एक और मैसेज है एक इस्लाम बहन का, बापा के लिए दुआ गो हैं, इसी तरह मदनी चैनल के लिए भी बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाए, मदनी चैनल को तरक्की अता फरमाए। शोएब अत्तारी हैं गुजरांवाला से, सरकार सल्लल्लाहु तआला वसल्लम को ख्वाब में देखने का कोई वजीफ़ा बता दीजिए। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है, दुर्द पाक की कसरत कीजिए। सरकार सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की ख्वाब में ज़्यारत जो करना चाहे, दिल में तड़प जो है वो होती है, एक तो ये है कि सरकार सल्लल्लाहु तआला वसल्लम का तसव्वुर करे। सरकार सल्लल्लाहु तआला वसल्लम का तसव्वुर करने का तरीका जो उलमा ने बयान फरमाया है कि जो सीरत की किताबें हैं जिसके अंदर हुलिया मुबारक का बयान है उसको पढ़े कि सरकार सल्लल्लाहु तआला वसल्लम का चेहरा अकदस ऐसा था, आंखें मुबारक ऐसी थी, माशाल्लाह जुल्फों की तो क्या बात है, रंगत ऐसी नूरानी थी, लबाए मुबारक ऐसे सुहाने और प्यारे थे, इसी तरह गर्दन मुबारक, इसी तरह आपका लिबास मुबारक, पूरा जो हुलिया बहुत डिटेल के साथ बुज़ुर्गों ने और बड़ी मोहब्बत के साथ इसको बयान किया। तो इसको पढ़े और फिर तसव्वुर ही तसव्वुर में सरकार सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की ज़्यारत करने की कोशिश करें, तसव्वुर जमाए, तो जब तसव्वुर जमेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ज़्यारत भी नसीब होगी। ज़ाहिर किस्मत ऐसे भी बुज़ुर्ग गुजरे हैं कि जो जागते हुए भी सरकार की ज़्यारत कर लिया करते थे, बहरहाल ये उनका मकाम रुतबा मरतबा था। तो ख्वाब में भी ज़्यारतें होती हैं, और दूसरी बात यह है, ये तो अमली तरीका है जो करना चाहिए, और दूसरा है कि दुरूद पाक की कसरत करें। तो जितनी दुरूद पाक की कसरत करेंगे तो उलमा फरमाते हैं कि जो सरकार सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की ख्वाब में ज़्यारत करना चाहे उसे चाहिए कि दुरूद पाक की कसरत करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ज़्यारत नसीब होगी। मज़ीद भी मैसेजेस हैं और कसीर मैसेजेस हैं, चंद एक और शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी कॉल्स भी जमा हैं वो भी लेनी हैं। लाला मूसा से एक मैसेज है, एक इस्लाम बहन का है, गुलाब के फूल ख्वाब में देखना अच्छा है, फरहत बख्श होता है, फूल का देखना जो है वो एक अच्छी ताबीर से इसको बयान किया जाता है। इसी तरह शहज़ाद अत्तारी हैं, इनकी अहलिया ने ख्वाब देखा है, अच्छा तो ये लिखा है दांत इनके टूट गए, तो दांतों में एक तो तफसील होती है और इसमें कुछ वजाहत भी है, इन्होंने बयान नहीं किया मैसेजेस के अंदर, हो सकते इतनी तफसील ना लिखी हो, कि दांत जो है वो अगर टूट जाए, अगर हाथ के अंदर आए तो ये माल मिलने की दलील होती है, दांत टूट कर यानी हाथ के अंदर अगर आए, और अगर ज़मीन पर गिर गए तो उसकी अलग ताबीर है। इसी तरह कौन से दांत टूटे, ऊपर के या नीचे के, इसकी एक ताबीर रिश्तेदार के इंतकाल से भी होती है, लेकिन वो चूँकि तफसील नहीं है, ऊपर के अगर दांत गिरें तो वो जो बाप की तरफ से रिश्तेदार होते हैं उनसे ताबीर होती है, नीचे के दांत जो है वो गिरें तो عورت کی طرف سے یعنی ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہوں اس کی تعبیر ہوتی ہے، اور اس کی ایک تعبیر جو ہے وہ دراز عمر سے بھی کی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں اسے دراز عمر کے لیے فرمائے، اور لمبی عمر خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، نیکیوں بھری آپ کو اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ موقع رہا تو مزید بھی میسیجز موجود ہیں، وہ بھی آپ کو پیش کروں گا، کچھ کالز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
احسان علی اتاری اکاڑا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مجھے میں نے ایک دن خواب میں دیکھا ہے کہ نا کچھ غیر مسلم ہیں، تو وہ انہوں نے نا سور کا گوشت پکایا ہوا ہے، تو میں ان کے ساتھ نا مل کے سور کا گوشت کھا لیتا ہوں۔ اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔
تعبیر اعتبار سے بہتر نہیں ہے، اور جو آپ نے بیان کیا، اچھا یہاں پر ایک وضاحت بھی کرتا چلوں کہ جس جانور کے انہوں نے نام لیا سور، تو مشہور یہ ہے عوام کے اندر کہ اس کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، خنزیر کا یا سور کا نام لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی، یہ ایک عوامی رومر ہے، مشہور ہو جاتی ہیں اس طرح کی باتیں، اگرچہ کہ وہ سخت نجس ہے، نجس العین اس کو قرار دیا گیا، کسی بھی صورت میں اس کو پاک کرنے کا طریقہ نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال زبان اس سے ناپاک نہیں ہوتی، ورنہ کتابوں کے اندر جہاں پر مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہاں پر خود قرآن کے اندر اس کا تذکرہ تو موجود ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک مسئلہ تھا، میں نے کہا آپ کو عرض کر دوں۔ اسی طرح اس کا گوشت کھانا چونکہ نجس ہے اور سخت ترین نجاستوں والا یہ جانور ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر بھی بہت زیادہ برائی پائی جاتی ہے، اور جو ماہر حیوانات ہوتے ہیں جو ان کے بارے میں معلومات لکھتے ہیں، تو جو بھی اس پر ریسرچ کی گئی، تو جتنے بھی جانوروں پر ریسرچ کی گئی سب سے زیادہ جو برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، وہ اسی کے اندر پائی جاتی ہیں، بلکہ یہاں تک بھی بیان کیا گیا ہے کہ بہت جلد اس کا گوشت جو ہے وہ گل جاتا ہے، اور جو لوگ اس کو کھاتے ہیں، ایسے بھی اقوام ہیں دنیا میں بہرحال کھاتے ہیں، تو وہ فوراً اس کے اوپر کوئی ایسا لیکوڈ وغیرہ ڈالنا پڑتا ہے انہیں، ورنہ اس کی جو ظاہری شکل ہے وہ بھی اتنی خراب ہے کہ بہت جلد گوشت کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور یہ خرابی کی طرف وہ جلد مائل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کا جو آپ نے بیان کیا، تو یہ تعبیر اعتبار سے اچھا نہیں ہے، اور مال حرام کھانے سے تعبیر ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی وضاحت میں کر دوں کہ جو تعبیر کے اندر بیان کیا جاتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، ہم حکم نافذ نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ جو بھی ذریعہ آمدنی آپ کا، آپ کہیں پر جاب کرتے ہوں گے یا اپنا بزنس کرتے ہوں گے، عموماً دو ہی طریقے ہوتے ہیں، تو اس کی شرعی تفتیش کر لیجئے۔ اب شرعی تفتیش کیسے کریں گے؟ اب ہم تو حرام مال اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو کسی سے چھینا ہے، چوری کیا یا ڈکیتی میں حاصل ہوا ہے، یہ بھی حرام ہے، لیکن حرام کے اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں۔ بیع و شراء کے اندر اس طرح کی غلطیاں پائی جاتی ہیں کہ بعض صورتوں میں وہ مال حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو اب جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کی شرعی تفتیش کروا لیجئے، اور یہ شرعی تفتیش ظاہر ہے کہ وہی کرے گا جو شریعت کو جاننے والا ہوگا۔ عالم کے پاس حاضری دیں، کسی سنی مفتی کے پاس حاضر ہوں، اور وہاں پر جا کر آپ اپنا بیان کر دیجئے کہ میں یوں 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 یہ کام کرتا ہوں، تو اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو مجھے بیان کر دیجئے، تو انشاءاللہ عزوجل اگر کوئی خرابی ہوگی تو اس کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے گی، اور اس معنی پر یہ خواب جو ہے وہ بہتر ہوا کرتے ہیں۔ ابتدا میں نے آپ کو ایک حکایت بیان کی تھی کہ ایک وہ غلطی کے اندر مبتلا تھا وہ شخص، اور تعبیر کے ذریعے جب اس کو توجہ دلائی گئی اور اس نے تحقیق کی تو وہ ویسا ہی معاملہ نکلا۔ تو ایسا ہوتا ہے، تو آپ بھی غور کر لیجئے کہیں آپ ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے میں مبتلا تو نہیں، اگر ایسی صورت پاتے ہیں تو اصلاح کیجئے، اور خود بھی حلال کھانے کی کوشش کیجئے، اور اپنے گھر والوں کو، ہر ایک کو جو ہے وہ حلال ہی کھلانا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، مزید بھی کالز موجود ہیں، سنتے ہیں ہمارے اسلام بھائی کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔
السلام علیکم سر۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں ادھر لاہور سے بات کر رہا ہوں، 68 سے۔ مجھے آپ سے خواب کی تعبیر معلوم کرنی سر۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے والد صاحب نظر آئے ہیں خواب میں، یعنی کہ وہ فوت ہو گئے نا 4 سال پہلے، تو ہماری گلی کی ٹکر پہ کھڑے ہیں، میں نے انہیں دیکھا خواب میں، تو اس کا یعنی کہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔
انشاءاللہ عرض کرتا ہوں جی، نیکسٹ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور میں نے عرض کرنی ہے کہ مجھے خواب میں میری دادی جان پہلے یعنی فوت ہو چکے ہیں, تو وہ خواب میں کبھی کبھی مجھے ملتے ہیں تو بیمار ہی دکھائی دیتے ہیں, تو بیماری کی حالت میں وہ فوت ہوئے تھے, تو برائے مدینہ اس کی تعبیر ارشاد فرمائے.
بیمار ملتے ہیں تو انہیں اسال ثواب کیجئے, دعا کیجئے, انشاءاللہ عزوجل ان کے لیے بہتری ہوگی, خیر ہوگی. پہلی جو کال کی تھی ہمارے اسلام بھائی نے کہ اپنے والد مرحوم کو گلی کے نکڑ پر کھڑے ہوئے یہ دیکھتے ہیں, تو اس کی کوئی تعبیر نہیں, عام معمولات سے, حالات اور واقعات سے یہ متعلق ہے. البتہ انہیں ایصال ثواب کرنے کے لیے میں ضرور عرض کروں گا اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کی ضرور کثرت کریں. جی میسیجز بھی آ رہے ہیں تو کچھ میسیجز کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی خواب بیان کیا ہے کسی نے, اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا چلیں جی, آپ سے یہ عرض ہے کہ اپنی موت کو دیکھنا یہ بھی خیالات سے متعلق ہے, اور اپنی موت کو بعض اوقات بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے, تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے, یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ہونا ہی ہے. تو اسی طرح سے نیکی کی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے دور رکھنے کی ضرور کوشش کرے. آگے بھی میسیجز ہیں ہمارے پاس. آصف بھائی ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو خواب میں روتا ہوا دیکھتا ہوں. تو بھائی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے نا کہ بعد میں رونا پڑے. تو اپنے حالات و واقعات پر غور کریں. ہاں اگر خوف خدا میں کوئی روتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, بارہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. آگے بھی میسیجز ہیں ہمارے پاس. ایک اسلام بہن نے میسیج کیا ہے, خواب میں روزانہ ہی کسی نہ کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہیں. قبرستان کے قریب تو نہیں ان کی رہائش, روزانہ ہی کسی نہ کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہیں. ہو سکتا ہے خیالات وغیرہ سے متعلق ہو, لیکن انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ اٹھتی ہیں تو روزی کوئی نہ کوئی فوت ہوا ہوتا ہے. بہرحال یقین کرنا ہی پڑے گا, ظاہر ہے لکھا ہے تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور یہ شکر ہے انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں جانتی نہیں ہوں کہ وہ کون ہوتا ہے, ورنہ تو گھبرا جاتے لوگ, سامنے آنا چھوڑ جاتے کہ مجھے مرتے ہوئے دیکھ لیا تو صبح پھر پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. تو بہرحال یہ لکھا ہے انہوں نے, کوئی تعبیر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اسی طرح ایک اور بھی میسیج ہے ہمارے پاس مدنی چینل کے حوالے سے. یہ کچھ تحریر فرما رہے ہیں, پسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں سلسلوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. تو ماشاءاللہ مدنی چینل جتنا زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں ملیں گی اور نیکی کی دعوت جو ہے وہ آپ کو یہاں سے دی جاتی ہے, اس کو حاصل کیا کریں اور جو کچھ کہا جائے اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرور کوشش کیا کریں. کالا سانپ دیکھنا کیسا؟ کالا سانپ, ایک تو نام انہوں نے نہیں لکھا. کالا سانپ جو ہے وہ سپاہی کی بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے, محافظ کی, سپاہی محافظ جس کو آپ گارڈ بھی کہتے ہیں, اور اسی طرح سے یہ دشمن کی بھی علامت ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے, خیر کے لیے, بھلائی کے لیے آپ دعا کی کثرت کرو. میرا مشورہ ہے, آپ نے علاقہ بیان نہیں کیا, کہ تعویذات عطاریہ آپ حاصل کر لیجئے اپنی حفاظت کے لیے تو انشاءاللہ عزوجل خیر ہوگی. لیکن سانپ کا دیکھنا ہر حال میں برا نہیں ہوتا, اس طرح کی تعبیر بھی کالے سانپ کی بیان کی گئی کہ محافظ کی علامت ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس طرح کا خواب دیکھنے والے کی حفاظت کا اہتمام ہوگا. تو یہ بھی ایک تعبیر کے حوالے سے بہتر ہوتا ہے بعض اوقات. ایک اسلام بھائی نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ نعت خوان بن گئے ہیں. اللہ کرے کہ نعت خوان بن جائیں. ویسے تو ہر مسلمان نعت خوان ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم ثنا بیان کرتے ہیں, لیکن عموماً جو اصطلاحی طور پر نعت خوان کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو خوش الحان جن کی آواز ہوتی ہے, جان پہچان ہوتی ہے, جن کو لوگ سننا پسند کرتے ہیں, تو وہ مراد لیا جاتا ہے. تو اگر اچھی نیت کے ساتھ کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں بھی اچھی آواز میں سرکار کی ثنا بیان کروں تو بہت اچھا ہے, مرحبا, اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے. لیکن امیر علیہ سنت دامن برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکروں کے اندر اس طرح کی گفتگو کئی مرتبہ فرمائی, جو میں آپ تک مفہوماً عرض کرتا ہوں کہ ہے اس کے اندر آزمائش, کہ جب اچھی آواز ہوتی ہے, جب کوئی لوگ دو چار آگے پیچھے ہوتے ہیں, رابطہ کرنے والے ہوتے ہیں, چاہنے والے ہوتے ہیں, تو بعض اوقات ہر کوئی نہیں آزمائش کا شکار ہو کر بعض برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے دل کے اندر. اسی طرح اور بھی معاملات ہوتے ہیں, اس پہ جو نعت پڑھنے پر جو رقم لینے کی ناجائز صورتیں ہیں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمت مانگنے میں حرج نہیں, کوئی بھی نعمت کا سوال کریں, لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل مجھے نعمت عطا فرما اور اس کی آزمائش سے مجھے محفوظ فرما, اس کی کوئی برائی مجھ تک نہ پہنچے, تو انشاءاللہ عز و جل وہ پھر حقیقی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. آج کے سلسلے کا وقت بھی جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیے. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں آپ کے ہاتھ آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
تیری جب کے دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی.